एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देती है, मिखाइल बुल्गाकोव की मास्टर और मार्गरेटा।
जी हाँ, एक ऐसा उपन्यास जिसमें व्यंग्य है, गहरा दर्शन है, इतिहास का एक अलग नजरिया है और एक एक अद्भुत प्रेम कहानी भी है।
बिल्कुल, और बुल्गाकोव का अपना जीवन भी कम नाटकीय नहीं था। डॉक्टर, लेखक, नाटककार, और वो भी स्टालिन की सोवियत संघ में।
हाँ, मतलब सेंसरशिप, दबाव, कलात्मक संघर्ष, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था और इसकी परछाई हमें इस उपन्यास में साफ दिखती है।
सुना है इस उपन्यास को लिखने में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी।
जी बिल्कुल, 1928 से लिखना शुरू किया और 1940 में अपनी मौत तक इस पर काम करते रहे। कहते हैं एक बार तो हताशा में पहला ड्राफ्ट जलाम ही दिया था।
अरे ठीक वैसे ही जैसे कहानी में मास्टर करता है।
हाँ वही तो, और फिर पूरी कहानी याददाश्त से दोबारा लिखी। ये उनके लिए एक जुनून था, पर अफसोस उनके जीते जी छप नहीं सका।
और छपा भी तो कितने सालों बाद, 1966-67 में, वो भी काट छांट के साथ।
जी, पूरा अनसेंसोर्ड संस्करण तो 1973 में आया, लेकिन जो सेंसर किया हुआ संस्करण था उसने भी आते ही धूम मचा दी थी।
तो आज हम इसी कमाल की रचना के परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसकी कहानी, इसके पात्र, इसके विषय, सब कुछ बहुत अनोखा है।
हाँ, ये एक साथ कई चीजें हैं। मॉस्को पर व्यंग है, पोंटियस पिलाट की कहानी का पुनर्लेखन है, मास्टर और मार्गरेटा का प्यार है, और बहुत गहरे दार्शनिक सवार भी हैं।
तो शुरुआत कहाँ से होती है?
कहानी शुरू होती है 1930 के दशक के मॉस्को में, पेट्रियार्क पॉन्ड्स नाम की जगह पर, एक गर्मी की शाम। दो लोग हैं, बर्लियोज जो एक साहित्यिक संपादक है और इवान बेजोडोमिनी एक नौजवान कवि,
और वो बहस कर रहे हैं।
हाँ, ईश्वर के अस्तित्व पर। दोनों पक्के नास्तिक हैं। तभी वहां एक अजनबी आता है, बड़ा रहस्यमयी सा, प्रोफेसर वोलंड। कहता है कि वो काले जादू का एक्सपर्ट है।
अच्छा,
और आते ही वो उनकी नास्तिकता को चुनौती देता है और फिर एक भयानक भविष्यवाणी करता है। कहता है कि बर्लियोज की मौत अभी होने वाली है, ट्राम से सिर कटकर।
और क्या वो सच हो जाती है?
हाँ बिल्कुल वैसे ही। ये घटना जैसे पूरे मॉस्को में एक अजीब सी दहशत फैला देती है। इवान जो ये सब देखता है, वो वोलंड और उसके उसके अजीब से साथियों का पीछा करता है, पर नाकाम रहता है और पागलखाने पहुंच जाता है।
यहीं से कहानी उलझना शुरू होती है ना?
जी, यहीं से कहानी की तीन मुख्य धाराएं निकलती हैं। पहली तो है वोलंड, जो असल में शैतान है, और उसकी टोली की।
उसकी टोली भी तो कमाल की है।
हाँ, उसमें कोरोव्यव है जो भेस बदलता रहता है, फोगूट नाम से भी जाना जाता है। फिर बहमोत है, एक विशाल काली बिल्ली जो दो पैरों पर चलती है, बातें करती है, मजाक करती है।
बाप रे, बोलने वाली बिल्ली।
जी, और अजाजेलो है, हेला है, ये सब मिलकर मॉस्को के ढोंगी लालची समाज में उथल पुथल मचा देते हैं, जैसे वो शहर का नैतिक ऑडिट कर रहे हों।
ये दिलचस्प बात है कि वोलंड को एक प्रोफेसर की तरह दिखाया गया है। शायद ये इशारा है कि जब समाज सच को नकारता है तो बुराई भी विद्वता का नकाब उड़ सकती है।
बिल्कुल सही कहा। वो लोगों को पाप करने के लिए उकसाता नहीं, बल्कि दिखाता है कि वो पहले से कितने गिरे हुए हैं।
अच्छा, और दूसरी धारा?
दूसरी कहानी है मास्टर की, एक गुमनाम लेखक, बहुत प्रतिभाशाली। उसने पोंटियस पिलाट पर एक उपन्यास लिखा था।
हाँ, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
जी, लेकिन जो सरकारी साहित्यिक आलोचक थे, उन्होंने उस उपन्यास को खारिज कर दिया, लेखक पर हमले किए। बेचारा मास्टर टूट गया और अपना उपन्यास जलाकर उसी पागलखाने पहुंच गया जहां इवान है।
कितनी दुखद कहानी है।
बहुत। और यहीं से जुड़ती है तीसरी कहानी, या कहें उपन्यास का दिल, मार्गरेटा,
मास्टर की प्रेमिका।
हाँ, मार्गरेटा एक अमीर आदमी से ब्याही है, पर उस शादी में कोई प्यार नहीं। उसे सच्चा प्यार और जीवन का मतलब मास्टर और उसके उपन्यास में मिलता है, और जब मास्टर गायब हो जाता है तो वो उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
यहां तक कि शैतान से सौदा करने को भी।
बिल्कुल, उसकी हिम्मत ही कहानी को आगे बढ़ाती है। और फिर है चौथी कड़ी, जो असल में मास्टर का उपन्यास है, पोंटियस पिलाट और येशुआ हानोत्सरी यानी ईसा मसीह की कहानी। लेकिन ये बाइबल वाली कहानी नहीं, ये पिलाट के नजरिए से एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है।
तो ये तीनों कहानियां मिलकर कुछ बड़े सवाल खड़े करती हैं। अच्छाई, बुराई, सच झूठ, कायरता, प्रेम, कला, है ना?
जी हाँ, सवाल की ऐसी दुनिया में जहां ईश्वर शैतान दोनों को नकारा जा रहा है, वहां नैतिकता का क्या मतलब है? सच बोलने की या सच के सामने खड़े ना होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है?
चलिए किरदारों पर थोड़ी और बात करते हैं। मास्टर और मार्गरेटा।
मास्टर, उसका असली नाम हम कभी नहीं जान पाते। वो जैसे हर उस कलाकार का प्रतीक है जिसे सच लिखने या रचने की सजा मिलती है। बहुत संवेदनशील है। उसने उपन्यास में अपनी आत्मा डाल दी पर दुनिया के हमले झेल नहीं पाया।
लेकिन उसका अंत पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, है ना?
नहीं, क्योंकि मार्गरेटा है। वो उपन्यास की नायिका है असल में। जहां मास्टर हिम्मत हार जाता है, मार्गरेटा लड़ती है। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, वो सक्रिय है, शक्तिशाली है।
हाँ, उसका बदलना, डायन बनना, बदला लेना, ये सब दिखाता है कि प्रेम उसे कितनी ताकत देता है। वो उम्मीद की तरह है।
बिल्कुल। फिर वो लैंड है। वो डरावना शैतान नहीं है। वो बहुत सभ्य, बुद्धिमान, यहाँ तक कि दार्शनिक भी लगता है।
हाँ, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ठंडक भी है।
वो न्याय करता है, पर उसका न्याय भी क्रूर हो सकता है।
सही कहा। वो मॉस्को आया ही इसलिए है कि देखें ये लोग ईश्वर के बिना कैसे जी रहे हैं, और उसे दिखता है लालच, झूठ, डर, तो वो उन्हीं को आईना दिखाता है। वो उत्प्रेरक है, कहानी को आगे बढ़ाने वाला।
और उसकी टोली कुरोवियेव, बेहमोथ बिल्ली, अजाजिलो, हेला, ये सब मॉस्को के पाखंड का मजाक उड़ाते हैं।
हाँ, उनके कारनामे बड़े मजेदार भी हैं, पर तीखे भी। और फिर मास्टर के उपन्यास के पात्र पोंटियस पिलाट, शक्तिशाली रोमन गवर्नर, लेकिन अंदर से अकेला, सिर दर्द से परेशान।
और कायर भी।
हाँ, सबसे बड़ी बात, वो यशुआ की सच्चाई को समझता है, पर अपनी कुर्सी बचाने के डर से उसे मौत की सजा दे देता है। यही कायरता उसका 2000 साल का श्राप बन जाती है।
और दूसरी तरफ है यशुआ हानोत्सरी। वो ईसा मसीह का एक बहुत ही मानवीय रूप है। वो चमत्कार नहीं करता, वो प्रेम और करुणा की बात करता है। मानता है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता।
उसकी सरलता, उसकी सच्चाई, पिलाट के डर और राजनीति के सामने खड़ी है। ये टकराव बहुत मार्मिक है।
तो उपन्यास के पहले हिस्से में मॉस्को में ये सब हंगामा चल रहा होता है।
जी, बलियोस की मौत हो जाती है। इवान पागलखाने पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात मास्टर से होती है। वोलेंड और उसकी टोली बलियोस के अपार्टमेंट नंबर 50 में डेरा डाल लेते हैं, जो पहले से ही बदनाम है।
और वो वैरायटी थिएटर वाला सीन?
हाँ, वो तो कमाल का व्यंग है। काला जादू का शो, पैसे बरसाए जाते हैं जो बाद में कागज के टुकड़े बन जाते हैं। पेरिस के फैशन वाले कपड़े दिए जाते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं, और लोग सरेआम नंगे हो जाते हैं।
ये उस समाज पर सीधा कटाक्ष है जो सिर्फ ऊपरी चीजों के पीछे भाग रहा है।
बिल्कुल। जो भी भ्रष्ट अधिकारी उनके रास्ते में आता है, वो या तो गायब हो जाता है या पागल। पूरा सरकारी तंत्र हिल जाता है। और इसी हंगामे के बीच हमें पिलाट और यशुआ की कहानी के अंश भी सुनने को मिलते हैं।
ये कॉन्ट्रास्ट बहुत प्रभावी है, मॉस्को का शोर और यरूशलेम की गंभीरता।
हाँ, फिर दूसरा भाग शुरू होता है और फोकस मार्गरेटा पर आ जाता है। वो मास्टर के बिना अकेली दुखी है। महीनों बीत जाते हैं, फिर अजाजेलो उसके पास वोलेंड का प्रस्ताव लेकर आता है, एक जादुई क्रीम।
और यहीं से सब बदल जाता है।
जी,
क्रीम लगाते ही मार्गरेटा जवान सुंदर हो जाती है। उसे उड़ने की शक्ति मिल जाती है। वो एक डायन बन जाती है। वो मॉस्को के ऊपर उड़ती है। उस आलोचक लातुंस्की के घर को तहस नहस करके बदला लेती है जिसने मास्टर को बर्बाद किया था।
ये उसका दुख से शक्ति की ओर का सफर है। वो अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, वो खुद एक्शन ले रही है।
सही कहा। फिर वो वॉलेंट से मिलती है और उसकी सालाना शैतानी महफिल यानी सैटर्न्स ग्रैंड बॉल की मेजबान बनने के लिए तैयार हो जाती है।
ये बॉल तो उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भयानक हिस्सा है।
हाँ, बहुत। मार्गरेटा को घंटों तक इतिहास के सबसे कुख्यात पापियों का स्वागत करना पड़ता है। हत्यारे, जालिम, जहर देने वाले, गद्दार, नर्क का पूरा नजारा।
सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
लेकिन इस भयानक माहौल में भी मार्गरेटा अपनी इंसानियत नहीं खोती। वहां एक आत्मा है, फ्रीडा, जिसने अपने बच्चे को मार दिया था। उसे सजा मिली है कि रोज सुबह उसे वही रुमाल दिया जाता है। मार्गरेटा उस पर दया करती है। ये बहुत बड़ी बात है, शैतान की महफिल में करुणा दिखाना।
जी।
और जब वोलेंड उसे एक इच्छा मांगने को कहता है तो वो पहले फ्रीडा की मुक्ति मांगती है
निस्वार्थ भाव से,
उसके बाद वो मास्टर की वापसी मांगती है।
ये उसकी नैतिक ताकत दिखाता है।
बिल्कुल।
वोलेंड दोनों इच्छाएं पूरी करता है, मास्टर वापस आ जाता है, और फिर वो सीन आता है जब कुरोवियेव जली हुई पांडुलिपि को वापस लाता है।
और वोलेंड कहता है पांडुलिपियां जलती नहीं है।
हाँ, शायद उपन्यास की सबसे मशहूर लाइन, कला की सत्य की अमरता का ऐलान।
प्रेमियों का मिलन तो होता है,
हाँ।
पर क्या वो इस दुनिया में रह पाते हैं?
नहीं, ये साफ हो जाता है कि इस दुनिया में उनके लिए जगह नहीं है। वोलन के लोग उनके बेसमेंट वाले घर में आग लगा देते हैं और उन्हें जहर देकर इस दुनिया से आजाद कर देते हैं।
तो उनकी मौत एक तरह की मुक्ति है?
हाँ, एक रूपांतरण। वो वोलेंड और उसकी टोली के साथ मॉस्को के ऊपर उड़ते हैं। रास्ते में येशुआ का शिष्य मैथ्यू द लेवी मिलता है। वो वोलेंड को येशुआ का संदेश देता है, मास्टर ने प्रकाश नहीं बल्कि शांति अर्जित की है, उसे अनंत शांति दी जाए।
प्रकाश क्यों नहीं?
शायद इसलिए कि उसने निराशा में उम्मीद छोड़ दी थी, अपनी कला को जला दिया था, लेकिन उसके काम और मार्गरेटा के प्रेम ने उसे शांति का हकदार बनाया है।
फिर उनका सामना पिलाट से भी होता है।
जी, पिलाट जो 2000 साल से अपनी कायरता की सजा भुगत रहा है, मास्टर को अब अपनी कहानी पूरी करने का मौका मिलता है। वो पिलाट से कहता है, तुम आजाद हो।
और पिलाट मुक्त हो जाता है।
हाँ, वो येशुआ के साथ उस चांदनी रास्ते पर चला जाता है जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। फिर वोलेंड और उसकी टोली भी विदा लेते हैं। मास्टर और मार्गरेटा को उनका आखिरी घर मिलता है, एक शांत सुंदर जगह जहाँ उन्हें हमेशा के लिए सुकून, प्यार और अपनी कला मिलेगी।
और मॉस्को?
मॉस्को में धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। सरकारी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। बस इवान, जो अब प्रोफेसर बन गया है, उसे हर पूर्णिमा की रात वो सब याद आता है।
क्या कहानी है, और इसके विषय बहुत गहरे हैं, जैसे अच्छाई और बुराई का रिश्ता।
हाँ, बुल्गाकोव इसे बहुत जटिल तरीके से देखते हैं। वोलेंड का वो कहना कि तुम्हारी अच्छाई क्या करेगी अगर बुराई ना हो, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
या शायद बुराई अच्छाई को परिभाषित करने में मदद करती है।
हो सकता है। और जो पाप सबसे बड़ा बताया गया है वो है कायरता।
कायरता सबसे भयानक अवगुण है।
जी, पिलाट की कायरता, मास्टर की कायरता, मॉस्को के लोगों की कायरता, जो सच बोलने से डरते हैं। उपन्यास कहता है कि सच जानते हुए भी डर की वजह से चुप रहना या गलत का साथ देना सबसे बड़ी नैतिक हार है।
और इसी से जुड़ा है कला और सेंसरशिप का मुद्दा। मास्टर की कहानी तो जैसे खुद बुल्गाकोव की कहानी लगती है।
बिल्कुल, एक सच्चा कलाकार जो सच लिखता है उसे वो व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर पाती जो झूठ पर टिकी है। लेकिन फिर वही उम्मीद, पांडुलिपियां जलती नहीं है, कला को दबाया नहीं जा सकता।
और इन सब मुश्किलों के बीच प्रेम एक रोशनी की तरह है।
हाँ, मार्गरेटा का प्रेम वो सिर्फ रोमानी नहीं है, वो साहसी है, निस्वार्थ है और आखिर में मोक्ष दिलाने वाला है। जहां मास्टर कमजोर पड़ता है, मार्गरेटा ताकत दिखाती है।
उपन्यास की शैली भी बहुत खास है। तीन कहानियां एक साथ चलती हैं, अलग अलग अंदाज में।
जी, मॉस्को वाला हिस्सा व्यंग्य और जादुई यथार्थवाद से भरा है। बात करने वाली बिल्ली, उड़ती डायन, ये सब उस सरकारी माहौल का मजाक उड़ाते हैं। फिर यरूशलेम वाला हिस्सा बहुत गंभीर यथार्थवादी लगता है, और मास्टर मार्गरेटा की कहानी में रोमांस और दुख दोनों हैं।
और कथावाचक भी बदलता रहता है, कभी मजाकिया कभी गंभीर।
हाँ, रूपक और प्रतीक भी बहुत हैं। पीला फूल, तूफान, सब किसी न किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं।
उद्धरणों की बात करें तो पांडुलिपियां जलती नहीं है और कायरता सबसे भयानक अवगुण है, ये तो जैसे उपन्यास की आत्मा है।
जी, पहला कला की ताकत और उम्मीद का प्रतीक है, दूसरा नैतिकता का, और वोलन का वो सवाल अच्छाई बुराई पर, वो भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है।
इस उपन्यास को पढ़ना वाकई एक झकझोर बहने वाला अनुभव है। हंसी भी आती है, डर भी लगता है, दुख भी होता है।
हाँ, और ये हमारे बने बनाए विचारों को चुनौती देता है। शैतान यहाँ न्याय करने वाला बन जाता है, और सबसे बड़ा पाप कायरता।
लेकिन अंत में अंधेरे के बावजूद एक उम्मीद बचती है, मार्गरेटा के प्यार में और इस विश्वास में कि सच्ची कला कभी मरती नहीं।
बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, प्रेम और कला की शक्ति बनी रहती है। शायद यही हमें इंसान बनाए रखती है।
सच में ये कहानी हमें बताती है कि सच के लिए, अपनी कला के लिए और अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत रखना कितना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी हो।
और शायद इसीलिए हर उस दौर में जहां झूठ और डर का माहौल हो, मास्टर और मार्गरेटा हमेशा प्रासंगिक रहेगा। सत्य और प्रेम की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।